ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा नबी बनाया था कि जो दो मरहलों को उन्होंने निभा, अंबिया जो मबूस हुए हैं तो आमतौर पर एक मरहले के लिए नबी मबूस होते रहे, यानी कौम को समझाना, उनकी इसलाह करना, उनको ईमान की दावत देना, तौहीद की तलकीन करना। तौहीद की तलकीन बुनियादी चीज थी। आप सब जगह देखिए जो अंबिया का जिक्र आता है, हर नबी का ख्याल आता है कि तुम अल्लाह को वाहिद मानो, खुदा को वाहिद मानो और नमाज पढ़ो, ज़कात दो, आमतौर पर उसका जिक्र आता है। तौहीद सबसे पहला मरहला होता है और जिन कौमों ने माना नहीं आखिर तक, और उतनी मुद्दत गुजार ली नबी ने दावत में कि जितनी मुद्दत गया के उनके लिए हुज्जत बनती थी कि इसके बाद भी क्या उम्मीद की जा सकती है। जहाँ तक गुंजाइश थी उनको दी गई, हर तरह समझाया गया, जैसे कि गुज़श्त आयात में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई उनको, फरमाया कि इन लोगों में याद और बहु मुजरमन इन लहु जहन्नम ला यमूत फिया वला यहया वयाति मुमिन कदम الصالحات اولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك جزاء من تزكى। यानी चीज़ें बताई गई इन सबको कि देखो अगर ईमान न लाओगे तो वहाँ बहुत बुरा अंजाम होगा, जहन्नम में जाना होगा और अल्लाह की नाफरमानी की सजा बड़ी सख्त है, और ईमान अगर ले आओगे तो तुम्हें बड़ा ऊंचा दर्जा मिलेगा, वो जन्नतें मिलेंगी जो हमेशा जहाँ रहना होगा और जहाँ नहरें जारी होंगी, और ये उन लोगों को चीज़ हासिल होगी जो अपनी ज़िंदगी को सवाल लें बना लें। लेकिन वहाँ से बराबर मुखालिफत होती रही और उसको उन्होंने मसला सियासी बना लिया कि ये हमारी हुकूमत को उखाड़ने के लिए आए हैं और ये जादू के ज़रिए से हमारी हुकूमत को उखाड़ना चाहते हैं, हम इनकी बात नहीं चलने देंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जिस तरह तवज्जो दिलाई, जो दलाइल दिए, जो दलाइल भी हो सकते थे वो दलाइल उनको दिए गए, अल्लाह को मानने के दलाइल, कि उसके बाद मामूली समझ के आदमी भी इसको मान लेगा और उसको उससे इख्तिलाफ नहीं होगा। लेकिन मसला इसका नहीं था कि वो उसको नहीं समझ रहे थे, बल्कि ये था कि वो अपनी बड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अपने को खुदा की तरह पेश कर लिया था और अपने को खुदा मनवाते थे, छोटा खुदा, बड़ा खुदा तो उन्होंने बना रखा था सूरज को, और इससे हटने का मतलब ये था कि उनकी बड़ाई ख़त्म हो जाती, वो अपनी बड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यही और कौमों का भी हाल हुआ जिन नबी मबूस हुए कि उन्होंने तौहीद को वाज़ हो जाने के बाद भी कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला को इलाह वाहिद मानना जो बुनियादी हैसियत रखता है उसको समझा देने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, और इस तरह समझाया गया कि उसके बाद फिर कहने का हक नहीं रह जाता कि हमें मालूम नहीं था या हम नहीं समझे थे। और जब इस हद तक बात पहुंच जाती थी तो अजाब आता था, और अल्लाह ताला को तो मुस्तकबिल भी मालूम है, माजी और हाल और सब मालूम है, तो अल्लाह ताला को तो पहले से मालूम होता था कि ये कौम मानेगी नहीं और इस पर अजाब भेजना होगा, और अल्लाह ताला के यहाँ तय हो जाता था कि इस पर अजाब इस किस्म का आएगा, इसलिए कि यह कौम इस हद तक पहुँच जाएगी और नहीं मानेगी। अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा करता नहीं है कि अपने जानने पर इक्तफा करे, बल्कि वो साबित हो जाने को भी ज़रूरी समझता है कि देखो इनको अच्छी तरह दिखा दिया गया, समझा दिया गया, जैसे किसी से कहा जाए देखो फला चीज तुम न खाना, इसके खाने के बाद तुम्हारे पेट में दर्द उठेगा और तुम बहुत बेचैन हो जाओगे, ये बहुत तुम नहीं जानते इसको, इसके अंदर जहर है लेकिन वो मज़ेदार है, आदमी कहता है अरे देखा जाएगा खा लेता है तो फिर वो जहर असर करेगा उस पर। यही बात दुनिया और आखिरत की है कि जो आमाल हम करते हैं अच्छे आमाल के अंदर वो है शिफा है और बुरे आमाल के अंदर जहर है, लेकिन फ़र्क यह है कि ये जहर मख्फी है और ये शिफा भी मख्फी है। जैसे दवा के अंदर भी शिफा मख्फी होती है कि दवा है, गोलियां हैं या टिकियाँ हैं कि देखने में बिल्कुल सीधी साधी मालूम हो रही हैं, कैसे ये बुखार को उतार देगी, कैसे ये दर्द को दूर कर देगी, उसको देखकर थोड़ी आदमी अंदाजा लगा सकता है कि दर्द को दूर कर देगी या ये बुखार को उतार देगी। लेकिन चूँकि वाकिफ आदमी कह रहा है कि हम तो बताते हैं, हमें इल्म है इसका कि इससे बुखार उतर जाएगा, इससे दर्द मिट जाएगा, आदमी एतबार करता है और उसको इस्तेमाल करता है, फ़ायदा उठाता है। अगर जब बार बार इसका भी तजुर्बा हुआ कि उसकी राय बाद गलत निकली, दवा ने फ़ायदा नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला की वहदानियत के जो दलायल अल्लाह ताला ने दिए हैं और नबियों ने दिए, उसमें इसका भी शुबा नहीं हो सकता कि ये शायद इसमें किसी बात में कोई कमी रह जाए। तो ये सब, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने सब बता कहलवा दिया, बता दिया नबियों के जरिए से कि देखो इन आमाल में जहर है और ये जहर, इस जहर को तुम्हें फिर ये जहर का असर उठा तुम पर पड़ेगा और तुम्हें फिर उठाना पड़ेगा इस मुसीबत को। और इसको बार बार कहा गया, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद में है कि परवरदिगार हमने इनसे हर तरीके से इनको समझाया, इन्हें खामोशी के साथ भी, यानी निजी तरीके से भी इनको समझाया, खुले तरीके से यानी जलसों में और तकरीरों में समझाया, समझाने के जितने तरीके हो सकते थे तो हमने अख्तियार किए। असर तो लहूँ आलम तो लहूँ ऐलाते हैं, तो इसके बाद भी ये नहीं माने और हमने इतनी मदद तक समझाया, हक अदा कर दिया, अब इनसे उम्मीद नहीं है कि इनकी इसलाह होगी। ये तो जहर खाने पर तुले हुए हैं और जहर छोड़ने के लिए राजी नहीं, जहर की चीज़ वो जहर जाहिर है कि दिखाई थोड़ी दे रहा है, लेकिन वाकिफ आदमी बता रहा है कि लोगों इसमें जहर है। अब अकल की बात क्या है कि अगर वो बात वो थोड़ा भी सच्चा है वो आदमी तो भी एहतियात करनी चाहिए, और जबकि ऐसा आदमी बता रहा है जिसके सच्चे होने में शुबा इसलिए नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला फिर नबी को मौजज़ा देता है, कि मौजज़े के ज़रिए से नबी की सदाकत जाहिर हो जाती है कि नबी है, यानी वो ऐसी बात करके दिखाता है कि जो इंसानों के बस में नहीं है, और समझते हैं कि ये इंसान तो कर ही नहीं सकता, जब इंसान नहीं कर सकता तो ये कैसे कर रहे हैं, तो इनको आसमानी ताकत हासिल है इस पर ये कर रहे हैं। जो जिसको आसमानी ताकत हासिल है तो वह आसमानी बात हमको बता रहा है तो उसमें हमें शुबा करने का क्या मौका है ही। तो अल्लाह ताला मौजज़ा भी इसलिए देता है ताकि नबी की सदाकत पर यकीन आ जाए कि ये आदमी कह रहा है। जो हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि तजुर्बेकार आदमी की बात को हम मान लेते हैं कि ये तजुर्बेकार है, ये कह रहा है, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला अज़ाब भेजता है। लेकिन जो जो लोग ईमान ले आते हैं और ख़ास तादाद में नबी की बात, तो फिर अज़ाब नहीं आता। अज़ाब नबी के आने के बाद और समझा देने के बाद आता है और उसमें वक्त लगता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को एक काम तो शुक्र ये हुआ जो ये हर नबी को दिया जाता था कि तौहीद की दावत दें, यानी फिरौन को फिरौन की कौम को दीन की दावत दें, तौहीद की दावत दें, ईमान की दावत दें। लेकिन फिरौन का वही हाल हुआ जो उसी कौमों का हाल हुआ कि आखिर तक नहीं माना, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़े दिखाए اور ان موجودوں کو ماننا پڑا اس کو کہ موجود ہیں، بلکہ فرمائش کرنی پڑی کہ تم ہمیں فلاں مصیبت پیش آئیے، تم اپنے تم اس کو دور کروا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. دور کرا دیا انہوں نے، اس کے بعد ایمان نہیں لایا، تب اللہ تعالیٰ نے عذاب طے فرما دیا. اللہ تعالیٰ عذاب جو بھیجتا ہے تو وہی دنیاوی طاقتوں ہی سے بھیجتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز آسمان سے نازل ہوتی ہو کہ جس کو آدمی جانتا نہ ہو کیا ہے. انہیں چیزوں کو، ایسا چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور ان کی طاقت بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ہوا ہے، بارش ہے، پانی ہے، یہ ہم کو اعتدال کے ساتھ اور بقدر ضرورت ہم کو ملتا ہے تو ہماری زندگی چلتی ہے. ہوا ہے، ایک رفتار سے چل رہی ہے ہلکی، تو ہمارے لیے صحت کے لیے موزوں ہے. ٹھنڈی ہے، اس حد تک ٹھنڈی ہے تو ہماری صحت کے لیے مفید ہے. اب اس کی ٹھنڈک اللہ نے بڑھا دی تو وہ ہماری مصیبت ہو جائے گی، اس کی رفتار بڑھا دی اللہ نے تو ہماری یہ مصیبت ہو جائے گی. اب ہوا جو رک جاتی ہے، حفظ ہو جاتا ہے تو مصیبت، ہوا تیز چلتی ہے تو مصیبت. تو ہر چیز کو اللہ نے اعتدال پر رکھا ہے، اس کے لحاظ ہماری زندگی کے لیے ہر چیز مفید ہے، لیکن ہم انہیں چیزوں میں رہ رہے ہیں، ہوا میں، پانی، یہ سب بس اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اسی کو عذاب بنا دیتا ہے. عذاب کے لیے کوئی نئی ایسی چیز نہیں، بلکہ وہی اللہ تعالیٰ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی تابے ہیں، انہی طاقتوں کی مقدار بڑھا دیتا ہے، اسی عذاب بن جاتی ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ کسی قوم کو تو آواز سے تباہ کر دیا اللہ نے، کسی قوم کو آندھی، تیز آندھی سے تباہ کر دیا، کسی قوم کو پانی سے تباہ کر دیا. دو قومیں پانی سے تباہ ہوئیں، حضرت نوح کی قوم زور کا سیلاب آیا پورے علاقے میں، نیچے سے پانی، چشموں سے پانی نکل رہا ہے اور اوپر سے گر رہا ہے، ایسا کہ بس تالاب ہو گیا، پورا علاقہ تالاب بن گیا، اب ان سب ڈوب گئے، سارے مکان گر گئے، جو کچھ ہوتا ہے. ابھی واقعہ میں دیکھا، یہ پیش آیا. اور فرعون کو تو اس طرح اللہ نے تباہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے لے کر نکلے. اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے ساتھ عزت کا یہ معاملہ نہیں کریں گے، اب چپکے سے رات کو تم ان کو لے کر خاموشی سے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو خاموشی کے ساتھ نکل کے لے کے چلے کہ ہم نکل جائیں اس ملک سے اور ان کی مصیبت سے آزاد ہو جائیں، فرعون کی مصیبت سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے عذاب رکھ دیا. کیسے رکھ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چلے تو جو راستہ جاتا تھا خشکی سینا میں جاتا تھا، جس سے حضرت یوسف وغیرہ آئے تھے، راستہ تھا ادھر سا شمال کی طرف جاتا تھا، راستہ غلط انہوں نے اختیار کر لیا، اندھیرے میں ہوگا، سیدھے چلے گئے، سیدھے مشرق کی طرف چلے گئے. حالانکہ شمال مشرق کی طرف جاتے تو خشکی نکل جاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ وہ راستے میں ان سے بھول ہو گئی، تو بجائے شمال مشرق نکلنے کے وہ سیدھے مشرق کی طرف، اور وہاں سمندر کی کھاڑی ہے، وہ جو ہے نا نہر سوئز وہ جگہ کھودی گئی ہے کہ جو خشکی کا علاقہ تھا جہاں سے آمد رفت تھی. تو اب جب پہنچے دیکھا سامنے سمندر کی کھاڑی، پتلا سمندر ہے لیکن وہ بھی دریا سے بہت چوڑا ہے بہت. اب سوچا کہ یہ کیا، ادھر اللہ کا حکم ہوا، پانی میں جوار بھاٹا ہوتا ہے تو وہ ایسا زور کے جوار بھاٹا ہوا کہ پانی ایک طرف ہو گیا اور بیچ میں پانی وہ ہو گیا، راستہ بن جاتا ہے، جیسے پانی دریاؤں میں بھی ہوتا ہے کہ بازے کا سطح پانی کی ہٹ جاتی ہے اور جزیرہ بن جاتا ہے، تو درمیان جزیرے سے بن گئے اور پانی الگ الگ اکٹھا ہو گیا. ہم دیکھا اس کو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ یہ ہمیں راستے مل گئے. تو اس میں انہوں نے लेकर दाखिल हो गए वो और निकल गए। उधर फिरौन को पता चल गया था कि ये लोग भाग गए हैं, उन्होंने फौरन अपनी फौज वौज को लेकर और अपने हामियों को लेकर उनका पीछा किया। अब पीछा करने अब देखा इन्होंने बनी इसराइल ने गई जो हो जा रही है फिरौन की, और फिरौन अब कहा मरे हम मारे गए अब मारे गए। अब मूसा से कहा उन्होंने कि मूसा हमको अब हमारे तबाही में कोई नहीं, अब ये हमको मार डालेंगे इसलिए कि हम भागे हैं भगोड़े कहकर, हमको फिर ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे और तुम्हारी जी। मूसा ने कहा नहीं अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह के हुक्म से हम काम कर रहे हैं, अल्लाह मदद करेगा। अब वो खैर निकले वहाँ से निकले, फिर उन्होंने देखा कि रास्ता है और ये जा रहे हैं उसमें दाखिल हो गए। वो जो फिरौन का लश्कर वो सब उस जगह पर पूरी तरह पहुँच गए जो खुश जगह थी, तो वो पानी जो इधर उधर जमा हो गया था खड़ा हो गया था मौजों का वो सब आगे मिल गया और पानी पानी हो गया और पूरा तालाब बन गया गहरा कहीं, अब उसी में सब डूबने लगे और सब। इस तरीके से अल्लाह ने फिरौन को इस तरह तबाह किया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का नबी बना दिया। अब तक वो गैर मुस्लिमों में काम करने के लिए उनको मुकल्लफ थे, अब वो अपनों में काम करने का अल्लाह ने उनके जिम्मे कर दिया। अब बनी इसराइल को दीन पर कायम रखने और दीन पर चलने की जिम्मेदारी हज़रत मूसा के जिम्मे अल्लाह ने कर दी और पूरा उसके लिए पूरा दस्तूर और पूरा कानून ज़िंदगी का अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, उसके लिए तौरात नाज़िल फरमाई। तो अब जब वो निकल गए तो यहाँ पहुँचे वो सीना का इलाका है और वो बंजर इलाका है, पहाड़ी और खुश्क इलाका है। तो वहाँ पहुँचे तो उनको अल्लाह ताला ने हुक्म हुआ अल्लाह ताला कि तुम जाओ फिलिस्तीन कनान जो तुम्हारा असल वतन था वहाँ जाओ, वहाँ दूसरों की हुकूमत है, तुम जाकर लड़कर अपनी हुकूमत वापस ले सकते हो, वहाँ जाकर तुम जाओ अपने वतन। बनी इसराइल ने कहा हम तो नहीं जाए, हम नहीं लड़ सकते, हमारे लड़ने की ताकत नहीं है। जाहिर है कि इतने दिनों तक वो फिरौन के तसल्लुत में रहे थे, हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और वो वहाँ जो हुकूमत थी वो ताकतवर हुकूमत थी कनान में, उनसे लड़ना वाकई हिम्मत की बात थी। उनका हम नहीं लाएंगे, उनका भाई चलो लोगों ने समझाया कि अल्लाह के हुक्म से जब तुम काम करोगे तो अल्लाह की मदद होगी, लड़ो चल कर अल्लाह फतेह देगा। उनका नहीं हम नहीं जा सकते, बिल्कुल सीधी बात है, अब मूसा अलैहिस्सलाम जाएँ अल्लाह के हुक्म से वो उस इलाके पर काबिज हो जाएँ फिर हमको बुला लें हम आकर निकल लेंगे। तो गोया कि अल्लाह ताला का हवाला देने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, तो अल्लाह ताला को कहा अच्छा ठीक है तुम यहीं रहो, इसी बंजर इलाके में रहो, जब तुम वहाँ नहीं जा सकते और अब तुम ऐसी जगह पे हो कि यहाँ तुम्हें वो सारी सहूलतें नहीं होंगी जो ज़िंदगी की सहूलतें हैं या रहो, तो 40 साल तक उनको वहाँ रहना पड़ा उस इलाके में। लेकिन अल्लाह ताला का करम उनके साथ ये हुआ कि गजा की दुश्वारी थी, अल्लाह ने मन मसलवा उनके लिए उतारा, पानी की दुश्वारी थी तो मूसा से कहा तुम चट्टान पर मारो अपनी अपना डंडा तो इसमें से चश्मा फूटेगा, चश्मा फूटा वो भी 12 चश्मे फूटे, उनके 12 कबाइल थे उसके लिहाज से, तो खाने का भी हो गया पानी का भी इंतज़ाम हो गया अल्लाह ने। इसलिए बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का बड़ा फजल था, बावजूद इसके कि उनको सजा दी लेकिन उस सजा में भी अल्लाह ने उनको और उसमें मसलहत भी अल्लाह ने ये रखी कि 40 साल में वो नस्ल तो ख़त्म हो गई जो नस्ल वहाँ से आई थी जिसने फिरौन के दबाव में ज़िंदगी गुजारी थी और जिसकी हिम्मतें टूट चुकी थी। अब जो 40 साल के अंदर नई नस्ल जो उभर के आई वो थी जिसने मशक्क़त के साथ ज़िंदगी गुजारी थी सहरा में और जो ज़िंदगी की सौगबतें हैं दुश्वारियाँ हैं वो झेली थी, तो मजबूत थे बाहिम्मत थे। तब 40 साल के बाद अब उन्होंने कहा उनको हुक्म हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहे उनके बाद दूसरे नबी जो थे ईसा, तो उनकी क़यादत में गए और जाकर फिलिस्तीन गए। तो अब अल्लाह ताला बता रहा है कि हज़रत मूसा से कहा गया कि अब बनी इसराइल को तुम देखो, अभी तक तुम फिरौन उनकी कौम को देख रहे थे, उनका तो अंजाम हो गया, लेकिन ये अब इनकी इनको संभालने की ज़रूरत है। ये इस हाल में आए हैं फिलिस्तीन वहाँ से मिस्र से कि मिस्र की तहजीब, मिस्र का मजहब, मिस्र का तमद्दुन सब इन पर असर अंदाज हो चुका है, और क्योंकि वहाँ ये जलील तरीके से रहे थे इसलिए ये अब इनमें हौसला भी नहीं, हिम्मत भी नहीं ये बिल्कुल, और ये इनमें कोई जुरत की बात भी नहीं, तो ये अब तरबियत इनको इनकी तरबियत की ज़रूरत है। तो ये नस्ल तो काम नहीं कर सकेगी, अब इसके बाद इनके बेटे और पोते आ जाएंगे 41 साल के अंदर, तो लेकिन ये क्या इनमें जो खराबियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। एक खराबी तो ये थी कि बुत परस्ती को उतना बुरा नहीं समझते थे, बुत परस्ती के माहौल में सारा गुजारा था, हो सकता है करते भी हों, बुतों की पूजा भी करते रहे हों वहाँ दिखाने के लिए। अब वहाँ से निकले तो यहाँ इसमें तो जिक्र नहीं है, दूसरी सूरतों में जिक्र है, हम मुनासिबत के लिए बता रहे हैं। देखा एक जगह मेला लगा हुआ है, एक बुत पूजा जा रहा है, उनका है मूसा हमको भी इस तरह की कोई चीज़ दे दो, बुध की तरह उसकी पूजा करें बड़ा अच्छा लगता है। उनका खुदा के बंदो, तौहीद के खिलाफ बात कर रहे हो, अल्लाह ने तुमको तौहीद की दौलत दी और तुम शिर्क की बात मान रहे हो। और उसके बाद वो उसने सामरी ने एक बनाया मुसला बनाया, उसमें से आवाज़ निकलने लगी, तो कहा कि खुदा है, खुदा कि इसमें खुदा हलूल कराया है, जैसे मुशरिकीन का अकीदा होता है ना, बुतों की पूजा क्यों करते हैं, कि इसमें खुदा की रूह आ गई है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो उनका तो अल्लाह ताला ने कहा कि शिर्क तुमने अख्तियार कर लिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अब ये काम अपनी कौम की इसलाह करें, और उसके साथ अल्लाह ताला का करम उनके साथ हो रहा था कि हम तुम्हें नवाज देंगे अगर तुम अच्छे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारोगे और तुम्हें सलाह तकवा होगा। यहाँ से उसका जिक्र है, वलकद औहैना इला मूसा अन असर बिअबादी, ये तो उसका जिक्र है कि फिरौन किस तरह तबाह हुआ। फरमाया कि हमने मूसा से को वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर तुम जाओ रात रात और इनको रास्ता खुश्की में, समंदर की खुश्की में रास्ता इनका बनाओ, और डरो नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं तुमको, और तुम्हें खौफ नहीं होना चाहिए। और उधर यह हुआ कि फिरौन ने पीछा किया अपने लश्कर के साथ, तो वशे हूँ मेरे यम में माँ वशे हूँ, तो फिरौन उसके लश्कर को पानी ने ढांप लिया, कोई गुस्सा ढांपा जा सकता है, वो अजल फिरौन और कौम हो अमा हदा, और नतीजा ये हुआ कि फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह किया और उसको सही रास्ते पर नहीं रखा, ये सारी कौम तबाह हुई फिरौन की ज़िद और फिरौन की हरकत से, तो उसी को नुकसान नहीं पहुँचा बल्कि उसकी पूरी कौम को नुकसान पहुँचा जो उसके मानने वाले थे, अपने हिदायत का उनके लिए सही रास्ता नहीं अख्तियार किया। अब यहाँ से बनी इसराइल का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल में दावत का काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। या बनी इसराइल अक़द अंजैना को मिनाजू तुम वाजना को जानब तूरिल अमना व नज़लना अलैकुम मन्ना व सलवा कुलु मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम व ला तज़गौ फ़ीह फ़यहिल्लु अलैकुम ग़ज़बी व मन यहलिल अलैह ग़ज़बी फ़क़द हवा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, तुमको हमने नजात दी तुम्हें दुश्मन से, ये देखो कितना बड़ा हमने तुम पर एहसान किया कि तुम जलील व ख्वार हो रहे थे और मारे जा रहे थे, हमने तुमको फिरौन की शर से और उसकी मुसीबत से निजात दी, और आज नाकू जानी बतूर लहमाना और तूर अजबले तूर के दाएं पहलू में जो जगह है वहाँ हमने तुमसे कहा कि वहाँ पहुँच जाओ, तो वहाँ हम तुमको साथ तुम्हारे काम तय करेंगे। वो नजल्ला अलैकुम मन्ना व सलवा, और हमने मन्ना व सलवा भी उतारा तुम्हारे ऊपर ताकि तुम्हें खाने पीने की दुश्वारी ना हो। कुलू मिन तैयबात मा रज़क़नाकुम वला तत्गौ। अब ये है कि तुम वो अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करो जो हमने तुमको दी हैं, खाने पीने की चीज़ें, यानी हराम हलाल का फ़र्क समझते हुए तुम अपना ग़िज़ा का निज़ाम बनाओ। वला तत्गौ, और सरकशी मत करो, यानी कोई मार पीट और झगड़ा और ये नहीं, बल्कि ईमान वालों के साथ की तरह ईमान वालों की तरह ज़िंदगी गुजारो। तो यही लाले वाले, अगर तुमने सरकशी की तो इसकी फिर रियायत नहीं होगी। रियायत जो है तुम्हारे बाप दादा और जो पुरखों ने जो नेक काम किए, तुम्हें तुमको हमने ये इज्जत दी है और तुम्हारे साथ ये, और अगर तुम सरकशी करोगे तो ये सरकशी फिर तुमको तबाह करेगी। तो यही लाले को गज़बी, तब मेरा गज़ब तुम पर नाजिल होगा। अगर तुमने सरकशी की और सही रास्ता नहीं अख्तियार किया, ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे लिए पट्टा लिख दिया गया है कि तुम्हें फिरौन से नजात दी गई, अब तुम हमेशा आराम से रहोगे। आराम से तुम, अगर तुमने हमारी नेमतों की कदर नहीं की और तुम सरकशी पे आ गए, तो यही लालेकुम गज़बी, गुस्सा हमारा तुम पर उतरेगा। और मैं यही लाले गज़बी फकत फकत हवा, और याद रखो जिस पर मेरा गुस्सा उतरता है तो वो गिर जाता है, फकत हवा वो गिर जाता है, यानी फिर वो संभल नहीं सकता। वो इन्नी लगफ़ारों मनता वामन वाम रसालहन सुमहतदा, और मैं माफ़ भी बहुत करता हूँ उन लोगों को कि जो तोबा करते हैं अपने बुराइयों से और ईमान लाते हैं और अमल साले करते हैं, और उसके बाद वो सीधे रास्ते पर रहते हैं, तो उनके लिए हम उनको माफ़ कर देते हैं। और उनको वो अब उसके बाद बनी इसराइल की तरफ से जो बातें होने हो रही थी नाफरमानी की या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करने की, उसका तज़किरा आगे यहाँ से है। उमा आज अलग अनुकौमी का या मूसा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये तय हुआ था कि अपने कौम के अहम लोगों को ले जाकर वहाँ कोहिनूर पर वहाँ जाएंगे और ऐसी चीज़ दिखाएंगे, अल्लाह ताला से ताल्लुक का मामला जाहिर करेंगे। तो हज़रत मूसा पहले चले गए और कहा तुम लोग लेकर बाद में आओ हमारे पीछे। उधर उसने सामरी ने वो गौशाला बनाकर और उनको शिर्क में मुबतला कर दिया। तो अल्लाह ताला ने मूसा से कहा तुम जल्दी आ गए, तुम जल्दी क्यों आ गए साथ लेकर आते? उनका परवरदिगार हम जल्दी आ गए थे ताकि आपकी रजा हासिल करें, हम लोग पीछे आ रहे हैं। कहा नहीं, पीछे क्या आ रहे हैं, वो तो शिर्क में मुबतला हो गए, उनको संभालो जाकर। फिर मूसा आए और उन्होंने डांट डपट की और किया और बहुत समझ कहा वहाँ। उसके बाद और वाकया जो हैं सब बयान किए जा रहे हैं कि मूसा, अब मूसा का ये दौर शुरू हो गया जिसमें अपनी कौम को और ईमान वालों ही को दुरुस्त रखने के लिए जो तदाबीर करनी चाहिए वो तदाबीर करें और समझाएं।